الحمد لله الرسول الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتین و حضرات، مجھے یہ احساس ہے کہ میں خاصا لیٹ ہوں اور آپ کو اس طرح انتظار کروانے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن بعض اوقات انسان کی جسمانی حالت ایسی ہو جاتی کہ خاصا دشوار ہوتا اس کے لیے کہیں وقت پہ پہنچنا. تو آئی ہوپ کہ آپ اس کو مائنڈ نہیں کریں گے، اور جب تک میں ٹھیک نہیں ہوتا آپ اس کے لیے مجھے معاف فرمائیں گے. لاسٹ سنڈے بھی اور اس سے پہلے بھی ایک صاحب کا رب تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے بارے میں سوال تھا، تو میرا خیال ہے کہ آج اس سے ابتدا کر لی جائے. رب تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سب سے پہلا اسم اللہ آتا ہے. اگر اس اسم کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ ایک ایسا اسم ہے کہ باقی سب اسم اسی میں سمائے ہوئے ہیں، کیونکہ جیسے آپ کو علم ہے یہ اس میں ذات ہے رب تعالیٰ کا، اور باقی صفاتی اسماء مبارک ہیں. تو صفات ذات میں ہی ہوتی ہیں، تو جب ہم ذاتی نام کو لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احاطہ کر رہا ہے دوسرے تمام اسماء مبارک کا، کیونکہ وہ صفاتی ہیں، وہ اسی میں شامل ہو جاتے ہیں. اب اس کے جو علم الاعداد کے مطابق اللہ کے اعداد پر تھوڑا سا اختلاف ہے لوگوں میں. جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے اس کا کہنا تو یہ ہے کہ اس کے 66 نمبر بنتے ہیں. لیکن دوسرا اسکول آف تھاٹ، اور جس میں میرے اپنے مرشد صاحب بھی شامل ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ رب کے اعداد کا مجموعہ 11 بنتا ہے، اور چونکہ وہ رب ہے تو باقی جہاں علم الاعداد آ جائے گا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سنگل ڈیجٹ لینے کے لیے سب کو جمع کرتے جاتے ہیں. لیکن رب تعالیٰ کے اسم میں ہم 11 کو جمع نہیں کریں گے، 1+1 نہیں کرتے. وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ 1+1=11. یہ مرشد صاحب کا بھی اس کے بارے میں یہی خیال تھا، کہ ان کا فرمانا یہ تھا کہ اللہ کے اسم کے حروف 11 بنیں گے، اور 11 کو ہم سنگل ڈیجٹ میں تبدیل نہیں کر سکیں گے، کہ رب کے یہاں دو ہی نہیں ہیں، وہاں یکجائی ہے، توحید ہے ایک. تو ہم اس کو 1+1 کر کے 2 نہیں کر پائیں گے، وہ 1+1 ہی رہے گا. لیکن دوسرے اصحاب اس کو 66 مانتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ 2360 जगहों पर मेंशन हुआ है। अभी अजीब इत्तफाक ये है, इसका भी टोटल वहीं जा बैठेगा। अब इसके अंदर यह है कि इसको विर्ध अगर करना हो तो यहां किसी जमाने में गुफ्तगू करते हुए शायद मैंने जिक्र किया था कि हम जब रब ताला के अस्माए मुबारक का विर्द करते हैं तो अगर वो दिन ढले से पहले पहले हम करें तो हम अलिफ और लाम के साथ उसको करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह का एक इसमें मुबारक है कद्दूस, हम उसको अलकद्दूसो पढ़ेंगे, उसका वेद अलकद्दूसो 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 करेंगे। लेकिन अगर हम शाम के बाद करेंगे इसको तो इसको हर्फ निदा के साथ पढ़ लेंगे हम, या कद्दूसो। तो इसी तरह जब हम दिन में इसका वेद करते हैं तो अल्लाह 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 कहते हैं, लेकिन जब हम रात को इसका व्रत करेंगे दिन ढल जाने के बाद तो या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, वो इस तरह से उसका व्रत आएगा। अब इसके अंदर एदाद हम, क्योंकि वहां तो एक है, तौहीद है वहां, तो हम इसके जो व्रत करेंगे उसमें कोई एक बात का ध्यान रखेंगे कि वो फिगर एक ही रहे। जैसे 100 पढ़ेंगे तो 100 को अगर हम इल्मुल अदाद पर देखें तो उसके 2 0 हटा दीजिए तो एक रह जाएगा, या फिर इसको हम 1000 बार पढ़ेंगे तो उसके 3 0 जब हट जाएंगे तो भी वो एक रह जाएगा। तो अगर हम हर नमाज के बाद इसको 100 टाइम्स पढ़ लें, नॉट 101, 100 टाइम्स, ये एहतियात करनी होगी हमें, उसको 100 टाइम्स अगर पढ़ लें तो वो जो आप जिस चीज के पीछे दौड़ते रहते हैं और मैं कभी बताने पर आमादा नहीं हुआ था वो मैं जिक्र कर देता हूं। ज्यादातर औली अकराम का ख्याल ये है, मैं खुद नहीं कह रहा, मैं उनका ख्याल बता रहा हूं, अल्लाह इसमें आजम है। एक और चीज जो जिसके पीछे आप दौड़ रहे हैं वो भी अर्ज कर देता हूं कि वो शख्स जो हर नमाज के बाद इसको 100 मरतबा पढ़ता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो साहिब कशफ हो जाता है। हजार बार पढ़ेंगे वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन जिक्र अज़कार के चक्कर में एक बात पे ध्यान रखिएगा कि हम नफली इबादात के लिए अपने फराइज से मुंह न मोड़ जाएं, जो हम पर अल्लाह ताला ने फर्ज किया है हम उसको न छोड़ें, वो हमें ध्यान रखना होगा। इसको इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। आज वो सारी बातें मैं कहना चाह रहा हूं जिसके पीछे आप दौड़ते रहे हैं, अगर किसी आदमी को एक बीमारी नई जान छोड़ती है, बुखार है कुछ है, तो इसका एक तावीज बनाया जा सकता है। और उस तावीज पर हम राइट से लेफ्ट को लिखेंगे اور اس کے وہ اعداد لیں گے جس کا ٹوٹل 66 بن جائے، جیسے ایک پھر 11 پھر 40 پھر، تو اس طرح اس کا وہ ٹوٹل بن جاتا ہے. لیکن وہ لیفٹ رائٹ سے لیفٹ کو جائے گا، اور لیفٹ پر اینڈ پر جا کے جب ہم اس لائن کا ٹوٹل کریں گے تو یہ چار اس کے خانے اس طرح سے ہوں گے، چار اس طرح سے ہوں گے، ٹوٹل 16 اس کے سکیور بنیں گے، اور اس پہ وہ لکھا جائے گا. وہ اگر پہنا دیا جائے تو بخار وغیرہ سے کو آرام آ جائے گا. اسی طرح یہ جنات کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ صاحب اس پہ جن آیا ہوا ہے، تو یہ نسخہ آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ میں سے ہر آدمی پیر صاحب کہلائیں گے، جیسے پیر ٹیپو ہے، پیر صاحب اور سہیل صاحب ہیں، تو ہر آدمی پیر بن جائے گا، کیونکہ یہ خاصا افیکٹو نسخہ ہے. کہ دیکھیے، میں نے یہاں کسی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ رب تعالیٰ کے دو طرح کے نور ہیں، ایک اس کا نور ذات ہے اور ایک اس کا نور قدرت ہے. جو نور قدرت ہے وہ تو وائٹ ہے، بالکل دودھیا وائٹ، اتنا دودھیا وائٹ کہ وہ بلیکش ہو جاتا ہے. ایک اس کا جو نور ذات ہے وہ بالکل ہلکا بلو، بہت ہی ہلکا بلو، لیکن انتہائی چمکدار اور بہت ہی اٹریکٹیو رنگ ہے وہ. تو اس نسبت سے چونکہ ہم اس میں ذات کو کر رہے ہیں، تو نور ذات ہی اس میں لیا جائے گا اس رنگ کو. تو بلو کپڑے کے اوپر اللہ لکھا جائے اور اس کو رول کر لیں، اور اس کپڑے کو اگر جلائیں اور اس کا دھواں سنگھا دیں ہم اس کو جس پر جن آیا ہوا ہے. ویسے یہ ہر جگہ کام کر گیا، اگر نہیں میں جن نکال سکا تو ٹیپو صاحب کا جن نہیں نکلا، وہاں کام نہیں اس نے کیا، باقی تو ہر جگہ کام کر گیا. تو جن جو ہے وہ جل جائے گا، خاک ہو جائے گا، وہ وہاں پہ اس کو استعمال کر لیجئے. میرا خیال ہے کہ یہ اسم کے سارے پہلوؤں سے میں نے اس کو آپ کو ایکسپلین کر دیا. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ رب تعالیٰ کے نیکسٹ اسم ذات پر، اسم مبارک پہ بات کریں گے. یہ کسی صاحب کا ایک یہ سوال ہے کہ جناب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا فرمان انہوں نے یہاں نقل کیا ہے کہ وسوسوں کی روئی کو کانوں سے نکال پھینک تاکہ تیرے کانوں میں آسمانی آوازیں سنائی دیں، کہ اس قول مبارک کی تشریح کریں آپ. بہت سادہ سمپل گفتگو ہے، اس میں تو تشریح کی ضرورت یوں نہیں پڑے گی. بات یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کی راہ پہ چلتا ہے تو شروع میں بڑا ذوق و شوق ہوتا ہے، تو اس کا دھیان ہر وقت رب کی طرف لگا رہتا ہے، رب کی عبادات کی طرف لگا رہتا ہے. تو چونکہ وہ سوچ ہی اس کی وہاں مرکوز ہے، فوکس ہوا ہوا ہے، تو اور چیزوں کے بارے میں اس کو سوچیں نہیں آتی ہیں. ایک پرٹیکولر جگہ پر وہ فوکس ہوا ہوا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے ذوق و شوق سے جب ذکر اللہ کا کرتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دل پر بڑے نمایاں طور پر اترتے محسوس ہوتے ہیں. انسان کی روحانی ترقی تیز ہوتی ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے عام طور پر کہ کچھ عرصے کے بعد انسان جب مطمئن ہوتا ہے کہ میں اس راہ پہ چڑھ گیا، وہ تو تسکین اس کو دیتی ہے بات کہ میں اس راہ پہ چڑھ گیا, لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ جو ایک اسے تسلی ہو گئی کہ میں اس راہ پہ چڑھ گیا ہوں, وہ اصل میں نقصان ہونے لگا ہے اس کا, کہ پھر وہ دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو لوگوں میں بیٹھ کے گفتگو کر کے خوش ہوتا ہے, لوگوں کی باتیں سنتا بھی ہے, خود بھی کرتا ہے, کاروبار کی باتیں بھی سنتا ہے اور چیزیں ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی توجہ بٹنے لگتی ہے. جب توجہ بٹتی ہے تو جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ زائل ہونے لگتا ہے آہستہ آہستہ. تو یوں مولانا روم نے فرمایا کہ اپنے کان سے وسوسوں کی روئی کو نکال پھینکو. اس کا بہترین حل یہ ہے, کئی بار میں نے عرض کی آپ سے یہاں, ابھی کشف سے متعلق بات کر رہا تھا, وہ اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم پوری طرح فوکس ہو جائیں گے اس جگہ پر. جب تک ہم فوکس نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ حاصل نہیں ہوگا, وہ صرف کہنے کی بات ہے. اور فوکس ہونے کا طریقہ کار میں نے عرض کی تھی کہ انسان کو کچھ عرصے کے لیے ہر طرح سے کٹ آف ہو جانا پڑتا ہے دنیا سے, نو ٹی وی, نو نیوز پیپر, نو فرینڈشپس, رشتے دار سے سب آدمی علیحدہ, اس تک تک ان سے علیحدہ رہتا ہے جب تک کہ صاحب کشف نہ ہو جائے, تاکہ نہ ان اس میل ملاقات میں ٹی وی پہ اور نیوز پیپر میں نہ اس تک کچھ چیز فیڈ ہو, نہ اس کا ذہن بھٹکے, تو وہ پوری طرح وہاں فوکس کرتا ہے, تو پھر جا کے حاصل ہو جاتا ہے. تو جب ایک سرٹن مقام پر آدمی پہنچ جائے تو پھر بے شک اپنی روٹین میں چلا جائے. اسی نقطے سے ایک بات ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ فقیر لوگ عام طور پہ جنگل کی راہ کیوں لیتے ہیں, وجہ یہ ہے وہ اس کے پیچھے. ان کا دوسرا سوال بھی یہی ہے کہ ان وسوسوں کا سورس کیا ہے, وہ تو میں نے ابھی عرض کیا آپ سے. تو ان کی اقسام میں کیا توبہ کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی؟ ناکامی کے وسوسے اور دیگر ناامیدی کے وسوسے آتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ پہلے ہم انجوائے کرتے تھے, جو کچھ ہمیں مشاہدہ ہوتا تھا, جو کچھ واردات ہمارے ساتھ پیش آتی تھی, وہ اب نہیں ہو رہی, تو ناکامی کا احساس بڑھ جاتا ہے اور وہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں. یہ ان کے چار سوال تھے, چاروں کا ہی جواب میں اپنی گفتگو میں دے چکا. اگلا ان کا سوال یہ ہے کہ ان وسوسے کے نقصانات اور ان کا حل کیسے کیا جائے, وہ تو میں نے عرض کر دیا. یہ کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ سیلف ریسپیکٹ اور سیلف ورتھ, وہ اصل میں سیلف اسٹیم کہنا چاہتے ہیں, اس میں انہوں نے شاید غلطی سے سیلف ورتھ لکھ دیا. وہ صحیح ٹرم اس کے لیے یوز ہوتی ہے سیلف اسٹیم. بات یہ ہے کہ سیلف ریسپیکٹ اور سیلف اسٹیم دونوں ایک ہی چیز کے بارے میں ایکسپریشنز ہیں. یہ हाँ, अगर फर्क जानना कोई चाहे तो फर्क जानने के लिए ईगो और सेल्फ एस्टीम, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। तो ईगो अना है, जो काबिले मजम्मत है, इसका ताल्लुक बराह रास्त नफ्स से है, बहुत बुरी चीज है। अना ये है कि फर्ज कर लीजिए मैं किसी जगह गया, महफिल में गया, तो किसी ने बढ़कर मुझे पहले सलाम नहीं किया, बाकियों ने किया, तो मेरे दिल में ये आया कि अच्छा इस आदमी ने मुझे सलाम खुद नहीं किया, आई सॉर्ट हिम आउट। मैं किसी महफिल में गया, लोग उठ के खड़े नहीं हुए, तो मैंने उसका बुरा मनाया। कोई आदमी आया, जैसे हम यहां बैठे हैं, और सबके सामने मुझे बुरा भला कह गया, तो मैं उससे जवाबी, मैंने रिएक्ट कर लिया उससे, या दिल में रख लिया कि इस आदमी ने मुझे इंसल्ट किया था सबके सामने। ये अना है, ये काबिले मजम्मत है। सेल्फ एस्टीम ये है कि उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, जिसे खुदी या खुददारी जिसको कहते हैं। कि अगर कोई शख्स भूखा है, उसको भूख ने बहुत सताया है, वसाइल नहीं है, तो वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, वो भीख मांगने से ज्यादा मर जाना पसंद करता है। ये खुददारी है, ये सेल्फ एस्टीम है। वो किसी की गलत डिमांड के सामने झुकता नहीं है। तो वो सेल्फ एस्टीम है कि हम जब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते कि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम के खिलाफ है, तो वो सेल्फ एस्टीम है, वो काबिले स्ताइश है। सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम तो एक ही बात है। गालिबन शायद आपके जहन में जिन साहब ने ये सवाल पूछा, उनके जहन में ईगो और सेल्फ एस्टीम थे। तो इनका अगला इसी का हिस्सा है कि एक फकीर के नजदीक दोनों में क्या अहम है, वो तो मैंने अर्ज कर दिया आपसे कि फकीर में सेल्फ एस्टीम बहुत होती है। तो इसी सवाल का इनका अगला हिस्सा ये है कि ताल्लुकात निभाते हुए फकीर दोनों में से किसको कितनी तरजीह देता है। मिसाल के जरिए बयान करें, फकीर दुश्मन है ईगो का, उसको बड़ी अच्छी तरह पता है कि मुझे फकर के मकाम से अगर कोई चीज गिरा सकती है तो वो मेरा ईगोइस्ट होना है, अनापरस्ती है मेरी, तो वो उससे बड़ी दूर भागता है, बड़ा कॉशियस होता है। हल्का सा भी उसे एहतमाल होने लगे कि उसके अंदर अना सर उठाने लगी है तो उसको कुचल देगा फौरी तौर पे। ये जो एक फिरका है फकर में, मलामती फिरका जो कहलाता है, ये अपने आप को बुरा भला कहते रहते हैं, अपने आप को अच्छे अल्फाज से याद नहीं करते। उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि अना जो है उसको कुचला जाए, मैं को कुचला जाए, नफ्स को कुचला जाए, कुछ कह लीजिए, एक ही चीज के ये नाम है सर। लेकिन सेल्फ एस्टीम जो है, खुददारी उसकी, खुददारी उसे महमीज करती है उसके सफर को आगे बढ़ने में, तो वो खुददारी अपनी कायम रखता है, चाहे उसको वो एक्सप्लेन किसी लफ्ज में करे कि मैं सिवाय रब के किसी से नहीं मांगता, मैं अपने रब के अलावा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, मैं अपने रब के अलावा किसी के सामने झुकता नहीं, मैं अपने रब के अलावा किसी को सजदा नहीं करता। अल्फाज कुछ ही इस्तेमाल करें, यही जो चीजें हैं ये डेवलप करती हैं उसकी सेल्फ एस्टीम को। फकीर तो इससे भी एतराज करता है कि वो अगर बीमार हो तो किसी से कह दे मैं बीमार हूं, वो पोज करता है कि मैं बड़ा सेहतमंद हूं, मैं तंदुरुस्त हूं। फाके से होगा तो अपने आप को पेट भरा जाहिर करेगा, मुसीबत में होगा तो अपने आप को सुख में जाहिर करेगा, तंगदस्ती का शिकार होगा तो अपने आप को खुशहाली का इजहार करेगा कि मैं बड़ा खुशहाल हूं। ये उसकी खुददारी को भी बिल्ड करती हैं और ये शुक्र अंदाजी का भी एक तरीका है, दोनों ही बातें हैं कि वो अपने उस आका के लिए गवारा नहीं करता कि मेरा आका जो इतना मेहरबान है, मुझे इतना पालता है, ऐसी नेमतें देता है रोज, अगर आज किसी वजह से मैं फाका कर रहा हूं तो मेरी शुक्रगुजारी के मायार के खिलाफ है ये बात कि मैं उस आका के लिए ये कह दूं कि मैं आज फाके से हूं। राजिक तो रब है, खिलाने वाला तो रब है, तो जब ये कहता है कि मेरे रब ने खाना नहीं खिलाया तो ये शिकवा हो जाएगा, तो फकीर शिकवा नहीं करता रब का। अब इनका अगला सवाल है कि व्हाट इमोशंस मस्ट डोमिनेट आवर लाइव्स एंड व्हाट बिलीफ मस्ट बी चेंज्ड। बात यह है कि फकीर फकर के मकाम पर पहुंच ही नहीं पाएगा अगर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल न किया। खा वो खुशी के इमोशंस हों, गम के इमोशन हों, खा वो हर्ट हो जाए किसी के बातों से, वो तमाम इमोशंस को कंट्रोल करेगा, इजहार नहीं होने देगा, बहुत खुश होगा, तन्हाई में रब के हजूर सजदा शुक्र बजा ले आएगा, दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता रहेगा बगैर होंठ हिलाए। वो इमोशंस को कंट्रोल करता है, फकीर के यहां इमोशंस का इजहार वो अपनी वाइफ से या किसी और से बेपना प्यार करता होगा लेकिन उसका इजहार नहीं करेगा, क्योंकि फकीर के मजहब में तो लिखा यही है कि इमोशंस को दबाया जाए। दर हकीकत कर क्या रहा होता है वो, उसकी जो फिलॉसफी है वो ये है कि वो जबिल्लत को अंडर कंट्रोल लाता है, ये याद रखिए, क्योंकि जबिल्लत इंसान को मरवा देगी, वो जबिल्लत को कंट्रोल करता है और इमोशंस का इजहार जबिल्लत में है, तो यूं हर चीज को वो कंट्रोल में ले आता है। तो जज्बात का कोई हो वो प्रमोट नहीं किया जा सकते, उनको कर्ब किया जाता है। और इनका सवाल का दूसरा हिस्सा, एंड व्हाट बिलीफ मस्ट बी चेंज्ड। बात यह है कि बिलीफ तो हमारा कोई हो ही नहीं सकता मुसलमान का मासवाय एक चीज के, तौहीद, रसालत और आखरत, इसमें एक चीज, ये बुनियादी तौर पर तो ये चीजें, तीन चीजें हैं, तौहीद, रसालत और आखरत। फिर ये है कि वो तमाम अंबिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तशरीफ लाए, उन पर ईमान, जो किताबें कुरान पाक से पहले आई उन पर ईमान, तो ये फरिश्तों पर ईमान, ये वो चीजें हैं जो हमारे ईमान का हिस्सा है। इसके अलावा तो हमारे ऐसे बिलीफ नहीं है कि उनको प्रमोट किया जाए, उनको तो एक जमाने में, यहां मैंने एक बात अर्ज की थी कि हमारे यहां हम में से हर आदमी सुबह से शाम तक एक बात कहता है, मुझसे बात करेंगे मैं फौरी तौर पे कहूंगा कि मेरा राजिक तो रब है, मेरा रिस्क मेरे रब ने देना है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप मुझे देखेंगे तो मुझे ये खौफ होगा कि अगर मैंने अपने बॉस की गलत बात न मानी तो ये मुझे जॉब से निकाल देगा। ये मेरी तरक्की रोक देगा, मुझे ट्रांसफर कर देगा। उस खौफ से मैं उसी से बातें मान लूंगा। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि दोनों में से दुरुस्त क्या है, जो मैं जुबानी तौर पर कहता हूं या जो मैं प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेट कर रहा हूं। ये बात मेरे लिए यकीन करना बड़ा दुश्वार है कि मैं ये सोचूं कि रिस्क मेरा रब भेजता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक दोस्त हो मेरा कहीं, वो मुझे गुजारे के लिए एक सर्टन अमाउंट हर महीने रिमिट करता हो तो मनी ऑर्डर के जरिए से वो पैसा आता है, जो पोस्टमैन है वो मुझे तंग करने लगता है, मुझसे नजराना मांगता है, डिले कर देता है, आता है जब मनी ऑर्डर मेरे हवाले कर रहा है तो एहसान जताता है। तो मैं क्या करूंगा, उस डाकिये से डरूंगा या मैं ये करूंगा कि टेलीफोन उठाऊंगा, अपने दोस्त से कहूंगा कि आप आइंदा से जो रुपया पैसा है वो आप मुझे बैंक के जरिए भेज दें, बैंक ट्रांसफर कर दें, क्योंकि ये पोस्टमैन मुझे तंग करता है, पैसा मुझे थ्रू बैंक ट्रांसफर मेरे अकाउंट में आ जाएगा। बैंक वाला मुझे तंग करता है तो वो पैसा मुझे किसी मनी चेंजर या रिमिटेंस वाले के जरिए आ जाएगा। तो मेरे लिए कोई रीजन नहीं है इस बात की कि मैं डाकिये से खौफजदा हो जाऊं। तो जो मेरा एम्प्लॉयर है वो तो एक पोस्टमैन है, जो मेरा रिस्क है वो तो मेरा रब भेज रहा है, तो मैं खौफजदा क्यों हूं अपने एम्प्लॉयर से? मैं उसके गलत बात नहीं तस्लीम करता, वो निकाल देगा कहीं और, अल्लाह रिस्क दे देगा। ये बात बड़ी मुश्किल से मेरी समझ में आएगी। इसी तरह हम ये कहते हैं कि जिंदगी और मौत रब के हाथ में है, लेकिन कोई भी चाहे मुझसे पिस्टल पॉइंट पर कुछ भी काम करा ले, जबकि मैं ये कहता हूं कि मेरी जिंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में है, और मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। मैं जान के खौफ से गलत काम करने को तैयार हो जाऊंगा। तीसरी बात मैं ये कहता हूं सुबह से शाम तक हजार मरतबा, इज्जत और जिल्लत रब के इख्तियार में है, जिसे चाहता है वो इज्जत देता है। लेकिन सूरत हाल यह है कि कोई आदमी मुझे ब्लैकमेल कर ले ये कह के कि मैं आपको बदनाम कर दूंगा, तो ये जो एक फर्क है कॉल ऑफ फेल का, कि जुबान से हम कुछ कहते हैं और प्रैक्टिकली रवैया हमारा कुछ और होता है, ये फकीर की यहां नहीं है। फकीर जो जुबान से कह देगा उसके दिल में वही होगा। इनका सवाल लंबा है, वक्त कम रह जाएगा। हाउ कैन वी कमिट टू अनदर विदाउट losing ourselves in trying to meet these most expectations in relationship, right? बात यह है कि हम हैं ही कहां, हम किसी दूसरे की तवक्कात पर पूरे उतरते हुए अपने आप को मिटाएं तो उस वक्त अगर कहीं हमारा वजूद हो, जब तक के मैं अपने वजूद को नहीं भुला देता मैं अल्लाह की राह पर चल ही नहीं सकता। शाह हुसैन की जुबान में कि मैं नहीं तू ही तू, तो जब तक कि मैं अपनी जात की नफी नहीं करता मैं रब की तरफ जा कैसे सकता हूं? एक बात तो यह है, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी फकीर के लिए। दूसरी बात कि जब मैंने अपना आप रब के सुपुर्द कर दिया तो मुझे अपनी जात की फिक्र क्यों है? मैं वो बात कहूं ही क्यों जो मैं कर नहीं सकता? तो अगर मैंने कह दिया कि मैंने अपने आप को अपने रब के सपोर्ट कर दिया, मेरे तमाम जरूरियात, मेरी तमाम काम, मेरी औलाद, मेरे तमाम मामलात रब के सपोर्ट, उसको कह दिया कि अब तू जान और तेरा काम जाने, मैं फिक्र नहीं करूंगा, तो फिर मेरी जात कहां है वहां? तीसरी बात, अगर मुझे इस पर ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ये देखना चाहो कि रब तुमसे राजी है तो ये देख लो कि खल्क़े खुदा तुमसे राजी है या नहीं, तो अगर मैं अपने रब को राजी करना चाहता हूं तो मुझे उसके बंदों को राजी करना होगा। तो जब तक के मैं अपने आप को मिटा न दूं, मैं किसी को खुश नहीं कर सकता। ये तीनों चीजें हैं। ये सवाल मजे का है, इस पे बात करना चाहें हम अगली मर्तबा रब ताला के किसी भी इसमें मुबारक पर बात करने के बाद, फिर जो टाइम बचेगा इस सवाल का बकाया हिस्सा उस पे बात करते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।